नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेत् मुदीरे नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके नमः ब्राह्मणे देवाय गोब्राह्मणे हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथाय ते नमः। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्निमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वंदे अहम श्रीगुरुश्रुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथानीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधाकृष्णपादनसहगण ललिता श्रीविशाखानीतांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। श्रीमद्भागवतम स्कंद 6 अध्याय 14 श्लोक नंबर 5। कल प्रभु जी ने एक ही पैराग्राफ पढ़ा है, ये 3 पेज है इसे भावार्थ को समझाने के लिए, इसीलिए ये श्लोक का ऊपर आज चर्चा करने के लिए मैनेजमेंट की तरफ से बता गया है। ऐसा नहीं 6 तो बोल सकता हूँ, कोई परेशान नहीं। क्या चाहते हैं आप लोग? हाँ जी, ध्यान से बोलिए, हरे कृष्ण बोल के बोलिए। नहीं, मैनेजमेंट नहीं, हम भागवत को क्लियरली समझाना है, भागवत को क्लियर समझाना है, इसलिए 3 पेज है। प्रभु जी तो एक ही पैराग्राफ लिया, वो पैराग्राफ पढ़ेंगे क्या बताए। और मैंने पहले मंगलाचरण इसलिए किया, एक एक पैराग्राफ पढ़ के इसके ऊपर चर्चा करेंगे। मैं हर बार क्या करता था, पूरा कंप्लीट पढ़ के इसके बाद मंगलाचरण करके फिर हम बोलते थे, ठीक है, रिपीट। तब श्लोक मेरा पीछे दोहराइए। मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिशो अपि महामुने। मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रसन्नात्मा कोटिशो अपि महामुने। सब धन्यवाद। मुक्तानाम मुक्त पुरुषों में से अपि भी सिद्धानाम सिद्ध पुरुष में से नारायण परायण ऐसा मनुष्य जिसने यह निष्कर्ष निकला है कि नारायण है, सुदुर्लभ अत्यंत दुर्लभ है, कठिनाई से प्राप्त होता है, प्रशांत परम शांत आत्मा जिसका मन कोटिशु करोड़ों में से अपि भी महामुने हे परम साधु। अनुवाद और तात्पर्य अभय चरण भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की, हे परम साधु, लाखों मुक्त तथा मुक्ति के ज्ञान में पूर्ण पुरुष में से कोई एक भगवान नारायण अथवा कृष्ण का भक्त हो सकता है? ऐसे भक्त जो परम शांत हो और अत्यंत दुर्लभ। तात्पर्य, शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस श्लोक का तात्पर्य इस प्रकार से दिया है, केवल मुक्ति की इच्छा अपर्याप्त है, मनुष्य को यथार्थ में मुक्त होना चाहिए। जब मनुष्य जीवन की भौतिकता की निरर्थकता को समझ लेता है तो उसे उच्च ज्ञान होता है और परिवार स्त्री तथा संतान से विरक्त होकर वानप्रस्थ आश्रम में स्थित हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अग्रसर होता हुआ संन्यास पद को प्राप्त करें, जिससे भौतिक जीवन में फिर से गिर कर कष्ट न उठाना पड़े। यद्यपि मनुष्य मुक्त होने की आकांक्षा करता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वह मुक्त हो गया। कोई बिरला ही मुक्त हो पाता है। निसंदेह अनेक लोग मुक्त होने के उद्देश्य से संन्यास ग्रहण करते हैं, किंतु अपूर्ण होने के कारण वे पुनः स्त्री भौतिक कार्यकलापों सामाजिक कार्य आदि के प्रति आसक्त हो जाते हैं। यहां तक काल प्रभु जी ने पाठ किया था, तब इसके ऊपर हम पहले चर्चा करते हैं। पहला शब्द आता है मुक्तानाम अपि। यहां पे अपि का शब्द भी कहा गया और कभी कभी अपि का शब्द होता है मध्यम भी कहा जाता है। और मुक्तानाम मुक्त कौन है? जो जीव भी मुक्त नहीं, दूसरा को मुक्त नहीं करा सकते हैं। और संसार ये जगत को संसार में प्रत्येक व्यक्ति क्या है, बंधन में है। और सिर्फ मुक्त बोलने से कोई मुक्ति नहीं हो जाता है। सिर्फ सुबह से शाम तक बोलेगा मैं मुक्त हो गया, मुक्त हो गया, मुक्त हो गया, मुक्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं। मुक्त होने का उपाय क्या है और कौन मुक्ति हो सकता है, इसलिए यहां पे क्या कह रहे हैं, जो मुक्त पुरुष होते हैं उनका संसार का प्रति कुछ भी आसक्त नहीं रहता है, ना संसार का प्रति, ना परिवार का प्रति, ना घर का प्रति, ना धन का प्रति, ना औरत का प्रति, ना गाड़ी का प्रति, ना शरीर का प्रति भी। जिस प्रकार सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी आए थे जब ये ब्रज में, तब सनातन गोस्वामी एक बार जाके नंदग्राम में 3 दिन तक तड़पते रहे, जब तक प्रभु का दर्शन नहीं होगा तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा, ये संकल्प लेके एक झाड़िया का नीचे भजन कर रहा है, निष्ठापुर को भजन कर रहा है, प्रभु का नाम ले रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये निष्ठा ना शरीर का प्रति आसक्त है, ना घर का प्रति आसक्त है, कुछ भी। जब त्याग करता है व्यक्ति उसको सुख मिलता है, योग से सुख नहीं है, तपस्या से सुख नहीं है, जो त्याग से सुख है। और सनातन गोस्वामी जाके तड़प रहे, भगवान का नाम ले रहे, जब तक प्रभु का दर्शन नहीं होगा, और भगवान ग्वाल बाल बनकर आए, 3 दिन तक नहीं खाए सनातन गोस्वामी, तो 4th दिन प्रभु स्वयं ग्वाल बाल बन के आए छोटे बच्चे और लोटा में दूध लेकर आए, और वो लोटा में जो दूध है बोले सनातन ये दूध को पियो, क्योंकि मेरा ये ब्रज मंडल मरे ये क्षेत्र में कोई भी भूखा नहीं रहता है। आप कैसा 3 दिन? तब लौटा दिए, ग्वाल बाल रूपी भगवान जब लौटा दिए वो दूध सनातन गोस्वामी पिए, और सनातन के लिए भगवान स्वयं कहे ये झाड़िया का नीचे नहीं, आपके लिए कि घर बनाता हूं, और एक ब्रजवासी को कहे बोले वहां पे जो साधु है उसके लिए कि कुटिया बनाइए। सनातन गोस्वामी के लिए ब्रजवासी एक कुटिया बनाया और वहां पे सनातन गोस्वामी रखे भजन किया। ये है निष्ठा भगवान का भजन का प्रति। हम तो संसार हम थोड़ी बहुत कुछ इधर उधर होता है तो हम पहले परिवार के लोग को पहले फोन करते हैं, सही है कि नहीं? कुछ भी थोड़ा बहुत होता है तो हमें परिवार का लोग को फोन करते हैं। अभी तक भी हमारा ना नाम का प्रतिनिष्ठा हो रहा है, ना भगवान का प्रतिनिष्ठा हो रहा है, ना हमारा गुरु का प्रतिनिष्ठा हो रहा है, क्योंकि हमें आसक्ति में है। जब आसक्ति रहती है इसलिए प्रभुपाद यहां पे भावार्थ में क्या कहते हैं, सन्यासी तो कोई ना कोई ले लेता है, सन्यासी लेने के बाद फिर भी क्या कहते हैं प्रभुपाद, कहते हैं क्या कहते हैं, उनका उद्देश्य और कुछ रहता है, उद्देश्य और कुछ रहता है। फिर क्या करते हैं, स्त्री का प्रति आसक्त होते हैं, भौतिक कार्यकलाप में लिप्त हो जाते हैं और सामाजिक कार्य करना चालू करते हैं। सन्यासी मतलब क्या है, सन्यासी मतलब सर्वनाश, सब कुछ नाश, पूरा नष्ट, सब किसी के साथ है और कोई भी आसक्ति नहीं, सिर्फ ये भगवान और मैं, ये दोनों का संबंध है और किसी के साथ संबंध नहीं। प्रभुपाद जब घर त्याग किए एक बार भी मोड़ कर नहीं गए, बस। तब यहां पे कहने का अर्थ है मुक्ता नाम, और वो मुक्त पुरुष कौन है? एक बार एक ही पुरोहित और एक ही जजमान, जजमान होते हैं ना, जजमान और पुरोहित, एक ही जजमान पुरोहित को कहा मेरा कैसा मुक्त हो जाए। बोले संसार में सभी का मुक्त हो रहा है, पुरोहित कहता है सभी का मुक्त हो रहा है, आपका कैसा मुक्ति नहीं हो सकता है? ना मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ता है, ना भागवत कथा करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, भागवत सप्ताह, क्या करना पड़ता है, भागवत सप्ताह, 7 दिन कथा सुनने के बाद व्यक्ति मुक्त हो जाता है। अच्छा, जजमान वाला बोल ठीक है ना। देखिए सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को 7 दिन कथा सुनाए और परीक्षित महाराज का मुक्त हो गया, और गोकर्ण ने कथा सुनाई और धुंधुकारी क्या हुए, मुक्त हो गए। तो जजवान कहा पुरोहित जी तो आप मेरा ऊपर थोड़ा कृपा कर दीजिएगा, 7 दिन कथा करा दीजिएगा, और कथा का व्यवस्था हो गया, 7 दिन तक कथा सुनने लगे, और कथा खत्म होने का बाद क्या हुआ, ना जजमान का मुक्त हो रहा है, जजमान का उद्धार नहीं हो रहा है, जजमान परेशान हो गया। फिर जजमान क्या करता है, कथा तो सुन लिया फिर जाके मुक्त तो नहीं हो रहा है, तब उसी गांव पे एक ही साधु थे, वो साधु को जाके मिले और साधु को कहे मेरा मुक्त तो क्यों नहीं हो रहा है, 7 दिन तक कथा सुना लेकिन मुक्त तो नहीं हो रहा है। सुखदेव गोस्वामी का कथा को परीक्षित महाराज सुन के उनका मुक्त तो हो गया, और गोकर्ण कथा धुंधुकारी ने सुन के उनका मुक्त तो हो गया, लेकिन मेरा मुक्त तो नहीं हो रहा। कैसे? साधु ने कहे क्या कहे, जो मुक्त पुरुष नहीं है वो दूसरे को कैसे मुक्त कर सकता है, आप दोनों तो बंधन में है, आपको जो जिन्होंने कथा कराया था, जिन्होंने आपको कथा कही उनको बुलाइए। फिर जजमान ने उसको बुलाया साधु के पास, और साधु ने दोनों को एक ही अच्छा रस्सी में बांध दिया, दोनों को अच्छा रस्सी में बांध दिया दोनों को, हाँ, जजमान को भी बांधा और पुरोहित को भी बांध दिया। बोला देखा ये कौन मुक्त हो जाता है, अपना खुद मुक्त नहीं है दूसरों को कैसा मुक्त कर सकते हैं। इसलिए मुक्तिमान मतलब आप मुक्ता ना मतलब पहले मुक्त होना है दूसरों को मुक्ति करा सकता है। और आसक्ति रहित होके जो भी व्यक्ति आसक्ति रहित होके भजन करता है वो व्यक्ति को मुक्त पुरुष कहा जाता है। इसलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं 7:3 श्लोक में, ये श्लोक सभी को याद है मेरा पीछे बोलिए, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् जतति सिद्धये जततां अपि सिद्धानां कश्चिन् मां व्यति तत्त्वतः। हजार हजार मनुष्य में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, हजार हजार। इसलिए कहते हैं मनुष्यम सहस्रेशु, हजार हजार मनुष्य के अंदर कोई एक सिद्ध के लिए क्या करता है, प्रयत्नशील करता है। और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला कोई होता है जो कि भगवान को समझ पाता है। हर व्यक्ति भगवान का शरण पे चला जाएंगे, हर व्यक्ति भगवान का भक्ति कर लेंगे, हर व्यक्ति भगवान का भजन करेंगे निर्भर हो नहीं सकता है। भाई तीनों भाई एक ही परिवार में होते हुए एक ही ब्रह्मा का भक्त बन गया, एक ही शिवजी का भक्त बन गया, एक ही विष्णु का भक्त बन गया, एक ही परिवार में एक ही गर्भ से आने का बाद तीनों का तीनों क्वालिटी बन गए, कौन कौन है? एक ही ब्रह्मा जी का भक्त बना, एक शिवजी का भक्त बना, एक विष्णु का भक्त बना, कौन है? रावण, कुंभकर्ण और सभी लोग भक्त बन जाएंगे था पॉसिबिलिटी नहीं। इसलिए यहां पे यही कहते हैं हजार हजार लोग का अंदर कोई सिद्ध के लिए प्रयत्न करता है और हजार हजार सिद्ध पुरुष का अंदर कोई एक बिरला होता है जो कि भगवान को समझ पाता है। इसलिए भगवान हजार हजार लोग, हम तो कहते हैं हजार हजार लोग तो वृंदावन आ रहा है, ट्रेन भर भर कर आ रहे, बस भर भर कर आ रहे, मंदिर इतना भीड़ है जाम लग जाता है रास्ता, कितने भक्ति कर रहा है, मंदिर आते हैं फिर भी मंदिर का सामने भी भगवान का सामने 2 मिनट भी खड़ा नहीं होते हैं आज का टाइम पे। आप देखिए लोग आएंगे चक्कर काट के बाद चले जाएंगे, भगवान भी चक्कर चलाएंगे। भगवान का मंदिर पे आना है कि धाम जाना है कि तीर्थ जाना है, 2 काम के लिए जाना है। पहला काम क्या है? अच्छा से भगवान को दर्शन करना। दूसरा काम क्या है? प्रभु का नाम रटना। इसका अलावा और कुछ नहीं, तीर्थ जाइए, धाम जाइए, मंदिर भी जाइए। आज का टाइम पे तो लोग चलो भाई मंदिर जाना है कि धाम जाना है, धाम बोलते हैं, धाम जाना नहीं बोलते हैं, धाम घूमना है। ये घूमने का जगह नहीं वृंदावन, वृंदावन में कृष्ण को पाना है। क्या करना है? कृष्ण को पाना है। कृष्ण मिलना चाहते हैं लेकिन हम मिलना नहीं चाहते, ये दुर्भाग्य है, ये दुर्दशा है। तब हजार हजार लोग का अंदर कोई सिद्ध पुरुष होता है और हजार हजार सिद्ध पुरुष का अंदर कोई भी एक व्यक्ति, इसलिए कहते हैं कश्चिन माम व्यति तत्त्वतः, ये तत्व में समझ पाता है भगवान का लीला को और भगवान का शरण पे आता है। और कहते हैं जो भागवत है, और ये भागवत सुनने मात्र से क्या होता है? 3 चीज मिलता है। भागवत श्रवण करने से क्या मिलता है? 3 चीज को प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत की अध्याय नंबर 10 श्लोक, स्कंद नंबर 10 अध्याय नंबर 1 श्लोक नंबर 4 में बताते हैं। ये 3 चीज उसी श्लोक में वर्णन है, मैं श्लोक नहीं बोल रहा हूं, लेकिन क्या क्या मिलता है भागवत श्रवण करने मात्र से? 3 चीज को प्राप्त होता है। पहले है निवृत्त, निवृत्त मतलब भौतिक इच्छा नष्ट होता है भागवत श्रवण और भागवत को पठन करने मात्र से। पहला भौतिक इच्छा की नष्ट मतलब निवृत्त हो जाता है। दूसरा है व्यक्ति मुक्त हो जाता है, क्योंकि मुक्त पुरुष का ये वाणी है, ये जो भागवत है मुक्त पुरुष का वाणी है। देखिए भागवत को कहते हैं सुख परीक्षित संवाद, और भगवदगीता को क्या कहते हैं? कृष्ण अर्जुन संवाद। संवाद कहा जाता है, विवाद नहीं कहा गया है। हमें न्यूज पेपर पढ़ते हैं उसमें विवाद है, लेकिन भागवत में संवाद है, भगवद गीता में संवाद है। तब इसी प्रकार कहते हैं व्यक्ति मुक्त हो जाता है। और तीसरा है भागवत श्रवण करने मात्र से, भागवत पठन करने मात्र से आनंद की अनुभूति होता है, आनंद अनुभूति। क्योंकि भागवत पठन करने मात्र से उसका अंदर इतने उत्साह बढ़ेगा। पहला पहला तो थोड़ा कड़वा लगेगा, पहला पहला जिसी प्रकार हम लोग जब भक्त नहीं बने थे तब हमको माला करने में बड़ा परेशानी होता था, है तो ना। अब जितने सभी भक्त लोग का ये एक्सपीरियंस है कि नहीं है बोलिए। हाँ जी, एक ही माला करना तो बड़ा कठिनाई पड़ता था। अभी 16 माला 32 माला 64 माला 128 माला फर्क नहीं पड़ रहा है, माला करते जा रहा है, इतने निष्ठा हो चुका है। पहला पहला शुरू टाइम पे आपको भागवत पढ़ने की सुनने के लिए थोड़ा सा लगेगा, लेकिन जब रेगुलरली पढ़ना चालू कर देंगे ना तब देखना कि भगवान हृदय में विराजमान है ना। आपका चित्त को शुद्ध स्वयं भगवान करते हैं, आप क्या शुद्ध करेंगे आपका चित्त को, भगवान स्वयं करते हैं। इसलिए कहते हैं सदा सभ्य श्रीमते भागवती कथा जस्य श्रवण मात्रेण हरिम चित्तम समाश्रयत। भगवान स्वयं आश्रय ले लेते हैं प्रत्येक दिन भागवत का श्रवण करने मात्र से। तब ये भागवत सुनने मात्र से ये तीन चीजें निवृत्त, दूसरा है व्यक्ति मुक्त हो जाता है, तीसरा है आनंद की अनुभूति करता है। हमें दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। भक्ति से रहित ज्ञानी जोगी तथा कर्मी अपराधी कहलाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु का कथन है मायावादी कृष्ण अपराधी, जो यह सोचने के स्थान पर कि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण है यह सोचता है कि माया ही सब कुछ है वह अपराधी कहलाता है। यद्यपि मायावादी कृष्ण के चरणाबिंद के प्रति अपराधी है किंतु तो वो भी उनकी गणना सिद्धों में की जा सकती है, अर्थात जिन्होंने आत्मा का अनुभव किया है उन्हें आत्मसिद्धि के निकटतर माना जा सकता है, क्योंकि उन्होंने कम से कम आत्म जीवन का साक्षात्कार किया है। यदि ऐसा व्यक्ति नारायण पारायण हो जाता है तो वह जीवन मुक्त मनुष्य से श्रेष्ठ है। इसके लिए उच्चतर बुद्धि की आवश्यकता है। ज्ञानी दो प्रकार के है, एक वे जो व्यक्ति की जो भक्ति की ओर उन्मुख होते हैं, और दूसरे निर्गुण अनुभूति की। और मायावादी सामान्यतः वृथा की अथक प्रयास करते हैं, अतः यह कहा जाता है कि बिना दोनों के धान को कूटने वाले हैं स्थूल तुषाव घातिनः। ज्ञानियों की दूसरे कुटियों में भी जिनकी जिनमें ज्ञान तथा भक्ति का मिश्रण होता है दो प्रकार के हैं, वे जो श्री भगवान के तथाकथित मिथ्या रूप की सेवा करते हैं, और जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के असली आध्यात्मिक सच्चिदानंद विग्रह के रूप में जानते हैं। मायावादी भक्त नारायण या विष्णु की अर्चना इस भाव से करते हैं कि विष्णु ने माया रूप अंगीकार किया है और परम सत्य वस्तुतः निर्गुण है, किंतु शुद्ध भक्त यह कभी भी नहीं सोचता है कि विष्णु ने माया का शरीर स्वीकार किया है, वरन उसे यह पता रहता है कि यदि परम सत्य ही परम पुरुष है ऐसा भक्त वास्तव में ज्ञानी है। वह कभी भी ब्रह्म तेज में तदाकर नहीं होता है, जैसा कि श्रीमद् भागवत में 10:2:32 में कहा गया है जे अन्य अराविदांख्य विमुक्त मानिनः स्तोयस्त भावाद विशुद्ध बुद्धय आरुह्य कुच्छेण परम पदम ततः पतन्त्यधो अन्याद्रुत जुष्मत ग्रयः। हे ईश्वर, जो अपने आप को मुक्त समझते हैं किंतु भक्ति से रहित है उनके बुद्धि विमल नहीं है। भले ही वे तपस्या के द्वारा मुक्ति के परम स्तर को प्राप्त कर लें, किंतु वे इस संसार में दोबारा अवश्य गिरेंगे, क्योंकि वे आपके चरण कमल की शरण में नहीं आते। इस श्लोक से समझ में आ रहा है, क्योंकि स्तर तक पहुंच चला जाओगे, लेकिन जब तक भगवान का चरण कमल को आश्रय नहीं हुआ, चरण कमल के प्रति आसक्ति नहीं हुआ, चरण कमल में आश्रय नहीं लिया, फिर उसको क्या करना पड़ेगा, दोबारा गिरना पड़ेगा। यहां पे यही बता रहे, संसार में दोबारा अवश्य गिरेंगे। और जो भगवान का चरण आश्रय हो गया और जो भगवान का भक्ति किया, उसका दोबारा है नहीं। कोई भी शास्त्र में ऐसा लिखा नहीं कि उनको दोबारा आना पड़ेगा जो भक्ति किया है। जिसी प्रकार आप देखते हैं, ये चित्रकेतु जो टॉपिक का ऊपर दिया जाता है, राजा चित्रकेतु का शोक, चित्रकेतु ने क्यों शोक किया। देखिए, पार्वती जी ने श्राप दिया लेकिन चित्रकेतु शोक नहीं किया, लेकिन यहां पे चित्रकेतु क्यों शोक कर रहा है, क्योंकि अपना बच्चा हरिबोल हो गया, अपना बच्चे के लिए इतनी आसक्त, ये बच्चे जब चलेगी है तब चित्रकेतु शोक कर रहा है। ये आगे आएगा, आप पढ़ेंगे आगे आएगा संपूर्ण इसी प्रकार के क्यों शोक किया। लेकिन शास्त्रगत प्रमाण के अनुसार कहते हैं, जो भगवान का शरणापन्न हो जाता है उसको दोबारा भगवान स्वयं बताए ना, न तद भाषेते सूर्य न शशांक न पापक जदगतवा न निवर्तन तथा परम। भगवान का पास जाने का बाद फिर वापस नहीं, और वहां पे सूर्य चंद्र का ज्योति से वो आलोकित नहीं है। गोलोक वृंदावन वैकुंठ लोक भगवान का शरीर से दिव्य ज्योति में आलोक है। ये लाइट आपको लगाना नहीं पड़ेगा कि वहां पे बॉल फ्यूज हो गया, कि वहां पे पंखा नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं। वो जगह पे भगवान का शरीर से दिव्य ज्योति में वो जगत पूरा आलोकित है। और अभी आप देखिए, नॉर्मल आप देखिए, एक ही सूर्य सारा जगत को लाइट दे रहा है कि नहीं है? लेकिन आप एक ही घर पे दो दो बल लगा के घर को अंधेरा को मिटाते हैं, सही। एक ही घर पे दो दो बल, तीन तीन बल लगाना पड़ता है एक अंधेरा को मिटाने के लिए, लेकिन भगवान ने एक ही बल लगाया सारा जगत को लाइट दे रहा है, एक ही बल सिर्फ। और गोलक वृंदावन वैकुंठ लोक में भगवान का शरीर से दिव्य ज्योति निकलता है। इसलिए यहां पे कहते हैं, भगवान का शरणापन्न व्यक्ति को दोबारा गिरना नहीं पड़ता है। फिर वही व्यक्ति ज्ञानी है। वास्तविक ज्ञान किसको कहते हैं, ज्ञान किसको कहते हैं? क्या हम ये भौतिक जगत में पीएचडी कर लिया, डॉक्टर कर लिया, और भक्ति में थोड़ा आते हैं तो थोड़ा बहुत शास्त्र पढ़ लिया, लेकिन वास्तविक ज्ञान यही है। ये नारद पंचरात्र में कहते हैं, ज्ञानदाता जो ज्ञानम तत कृष्ण भक्तिदम सा भक्ति ही परमा सुधा कृष्णदास्य प्रदाचजा। पिता वो है जो ज्ञान दे, पिता वो है जो ज्ञान दे, ज्ञान वो है जो कृष्ण भगवान की भक्ति दे, भक्ति वो है जो कृष्ण भगवान की शुद्ध सेवा प्रदान कर देने वाली है। ये रियल ज्ञान है। लेकिन आज का टाइम पे कितने माता पिता होते हैं अपना बच्चे को संस्कार देते हैं, कितने माता पिता है। मैं आज सुबह ऐसा ही प्रवचन दे रहा था सुबह का, जो तब कभी कभी पूछ लेता हूं, कितना बजे आप लोग को जागते हैं? ना 8 बजे, कोई बोलता है 12 बजे, कोई बोलता है 13 बजे, 15 बजे, 18 बजे, ऐसे ही टाइम, मतलब 10 टाइम बताते हैं ना। मैंने पूछा, जब कोई बोला, मैं बोला 8 बजे उठता हूँ, मतलब 8 बजे आप अभी 8 बजे उठेंगे ना, आपका बेटा 12 बजे उठेगा, क्योंकि माता पिता का संस्कार, माता पिता को संस्कार को, माता पिता का, माता पिता जिस प्रकार करते हैं बच्चे इसको फल करते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। क्यों सुबह उठना है ये बहुत महत्वपूर्ण है, सुबह का समय बहुत पावरफुल है, सभी लोग को भक्त, हमारे जितने सब भक्त आप बैठे हैं, आपको तो मालूम है, जिन्होंने सुबह नहीं जागते हैं उनको बताना चाहिए। सुबह का समय इतने पावरफुल है, समय का नाम है ब्रह्म मुहूर्त। इसलिए प्रभुपाद ने सुबह का आरती मंगलारती क्यों की? इतने ठंडी पड़ रहा है, लेकिन आरती का टाइम कभी चेंज किया गया? बोलो भाई, हाँ बताइए। क्योंकि सुबह का समय का प्रभुपाद ने रखा 3 बजे से लेकर 6 बजे तक, जो 3 घंटा होता है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहता है। और ये ब्रह्म मुहूर्त का अंदर 25 मिनट ही ज्यादा पावरफुल है जो आरती का टाइम 4:30 से 4:55, 4:10 हमारा प्रभुपाद जी का आरती होता है। लेकिन शास्त्र में जो वर्णन में बता रहा हूं, प्रभुपाद ने वो टाइम को ये किया 4:30 बजे से 4:55 तक, ये बहुत पावरफुल है। प्रभुपाद उसी टाइम में आरती, हाँ 25 मिनट सिर्फ, ये पावरफुल है। लेकिन 3 घंटा ब्रह्म मुहूर्त रहता है 3 से 6, तब भाई 3 से 6 बजे का अंदर हमारा जो भी हम करते हैं ये बहुत हजार गुना पुण्य ऑटोमेटिक हजार गुना बढ़ते जाता है। इसलिए सुबह के टाइम पे आप माला कीजिएगा और दोपहर में माला कीजिए, इसमें अंतर आएगा, आप खुद करके देखिए। तो मैं उसी तरफ नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन देखिए इसलिए कहते हैं पिता वो है जो ज्ञान देता है। और कौन सा ज्ञान? भौतिक ज्ञान नहीं, कृष्ण ज्ञान, कृष्ण भक्ति का ज्ञान। और वो ज्ञान है जो कृष्ण भगवान की भक्ति दे, और भक्ति वो है जो कृष्ण भगवान के शुद्ध सेवा को प्रदान करते। तो फिर हमें पहले चर्चा कर रहे थे जो ज्ञानी होते हैं और जो जोगी होते हैं और कर्मी होते हैं, अपराधी कैसा कहा जाता है। इसलिए कहते हैं मायावादी कृष्ण अपराधी। तब कहते हैं ना, जीवेर निस्तार लागे सूत्र कैल व्यास, मायावादी भाष्य सुनिले हय सर्वनाश। मायावादी का भाष्य श्रवण करने मात्र से क्या होगा? सर्वनाश हो जाता है। इसलिए भागवत में एक श्लोक आता है, अवैष्टम मुखद गिरनम पुतम हरि कथा श्रवणम, श्रवणम नैव कर्तव्य सर्प उचिष्ट जथापय। जो वैष्णव नहीं है वो कथा नहीं कर सकता है। अवैष्णव, वैष्णव होने के बाद प्रवचन दीजिए, आचरण करके प्रवचन दीजिए। अवैष्णव मुखद गिरनम पुतम हरि कथा मृतम श्रवणम नैव कर्तव्य। और श्रवण करने मात्र से क्या होगा? जिसी प्रकार दूध अमृत है और दूध में सांप आकर सिर्फ मुख लगाए तब दूध क्या बन जाएगा? जहर बन जाएगा। सर्प उच्छिष्ट जथा पय, और वो जहर को पान करने से क्या होगा? जहर को पीने से क्या होता है? हरिबल हो जाएंगे, और यही कल्याण हो रहा है। कथा तो बहुत सारा जगह पे चल रहा है, कथा में बहुत सारा जगह पे श्रवण करना है वैष्णव से। कुछ जो कोई भी वैष्णव बोल रहा है, लेकिन किसी भी भागवत में कोई भी श्लोक का ऊपर चर्चा कर रहा है, आप श्लोक को पढ़िए और श्लोक में जो लिखा है उसी का ऊपर वो बताएगा। इधर उधर का बात नहीं भागवत में, कभी भी इधर उधर का बात नहीं भागवत ने। सब कुछ प्रभुपाद ने इसी भागवत के अंदर सब कुछ डाल दिया, कोई ऐसा चीज नहीं डाला है। कोई भी आप देखिए कितने टीका आप पढ़ ले, लेकिन सारा टीका भागवत में प्रभुपाद ने कहां कहां से ला के। तो फिर हम यहां चर्चा कर रहे थे, फिर आता है इसका प्रमाण भगवद गीता में भी दिया गया है, जहां भगवान कहते हैं अब जानते मां मूढ़ा मानुषी तनु आश्रित परम भाव जानतो मम भूत महेश्वरम। तो वो व्यक्ति जब भगवान ये धरती पे आते हैं मनुष्य रूप में कि नरलीला करने के लिए, लोग नहीं समझते, बोलते ये क्या भगवान है। लेकिन आज का टाइम पे लोग भगवान को मान लेते हैं। जो व्यक्ति थोड़ा मंत्र जंत्र कर देता है, थोड़ा वशीकरण मंत्र सीख लिया, तब वो व्यक्ति के पास लाइन लगाएंगे, आज ये भगवान यहां पे प्रकट हुए। भारत में तो प्रत्येक दिन भगवान प्रकट हो रहे हैं, प्रत्येक दिन डेली भगवान कहां से क्रिएट हो रहा है? वही दो पैर दो हाथ, और कुछ दिन के बाद भगवान लीला कर दिए, फिर जाकर जेल में बैठ गए। बोले भगवान आने का पहले जेल में थे, लेकिन अभी हम लोग काम करके जेल में जाते हैं, ऐसा बोलते हैं। अब बताइए, लेकिन भगवान यहां पे प्रमाण दे रहे, भगवान किसके लिए आते हैं धरती पे, ये भी शास्त्र में वर्णन है। और भगवान जब भी आते हैं नललीला किसके लिए आते हैं? भगवान भक्त के बिना नहीं रह सकते हैं। और भक्त भगवान का बिना नहीं रह सकता। जितने लीला सब आप देखेंगे, भगवान ने जितने सब लीला किया भक्त के लिए किया, और यदि भगवान आते ही धरती पे भक्त के लिए ही आए। प्रमाण ये शास्त्र में कहता हूं, भक्त भक्ति और भगवान तीनों को एक ही रूपता है, तीनों में ही अन्यान श्रयत्व है, एक दूसरे के बिना टहर नहीं सकता है। भगवान का बिना भक्त, भक्त के बिना भगवान नहीं रह सकते। भक्ति दोनों को जोड़ने वाली डोरी क्या है? भक्त और भगवान के साथ बांधने के लिए डोरी क्या है? भक्ति। भक्ति रूपी डोरी में भगवान और भक्त के साथ बांध जाते हैं, और बांध कर क्या कहते हैं? भक्त और भगवान सरलता निकुंज में रस प्लावित होकर भव सागर की उर्मिया पर तैरते हैं। भगवान को अन्य अवलंबन पर आश्रित साधक जैसे ज्ञानी, कर्मी, जोगी, तपी, जपी आदि की तनिक भी चिंता नहीं रहती, क्योंकि उनका आश्रय तथा अवलंबन भगवान न होकर उनकी अपना साधना ही है। किंतु निष्कंचन भक्त एकमात्र आश्रय उसके आराध्य प्रभु ही होते हैं। भगवान का मन भी भक्तों के बिना नहीं लगता है, उन्हें अकेलापन अच्छा नहीं लगता है, इसलिए एक अहम बहु श्याम अपने भक्तों के साथ बहुत रूप में विहार करते हैं, अलग अलग रूप। इस संकल्प के साथ नाना रूप में प्रकट होकर रसिक प्रियजनों के साथ विविध क्रीड़ा करते हैं। भक्त और भगवान दोनों अनंत रूप से अनंत लीला विहार करते हैं। भगवान के मानव रूप में प्रकट होने की दो ही उद्देश्य है। भगवान यदि मानव रूप लीला करते हैं दो के लिए, क्या? एक ही तो भक्तों के साथ क्या करते हैं? लीला क्रीड़ा भक्तों का साथ। दूसरा है लीला विग्रह का दर्शन और श्रवण कराकर जगत जीव को उद्धार करते हैं उनका कल्याण के लिए। भगवान नललीला इसलिए करते हैं दो काम के लिए, भक्त का साथ है लीला क्रीड़ा, और दूसरा है लीला विग्रह का दर्शन और श्रवण करा के जीव को उद्धार करते हैं। इसलिए भगवान मनुष्य, लेकिन जो लोग भगवान जब नललीला करने के लिए आते हैं तब तो लोग नहीं मानते हैं, इसलिए भगवान यहाँ पे भगवद गीता में 9:11 में बताए दिए, अब जानते माँ मूढ़ा, वो मूढ़ा व्यक्ति है, मूर्ख है। जिस प्रकार लोग गला पे तुलसी माला लगाने में डरते हैं, जो व्यक्ति गला पे तुलसी माला नहीं लगाता है वो भी मूर्ख कहा गया, सबसे बड़ा मूर्ख है। मेरा पीछे बोलिए, जन्न कंठे तुलसी नास्ती तेनरा मूढ़ा मानसा, ते नरा मुड़ा मानसा, स्वान विष्टम तस्या अर्णम जलम च मदिरा समम। गला पे तुलसी माला क्यों? तुलसी कृष्ण का प्रिय है, आप बाईचांस भोग नहीं लगाया लेकिन आपका गला पे तुलसी माला है, आप जब भोजन करते वो प्रसाद हो जाता है। और जब गला पे तुलसी माला नहीं आप खा रहे हो, जन्न कंठे तुलसी नास्ती ते नरा मूढ़ा मानसा, वो व्यक्ति मूर्ख है। दूसरा लाइन में क्या कहते हैं? स्वान विष्टम तस्य अर्णम, गला पे तुलसी माला नहीं आप भोजन कर रहे हो, वो अर्ण क्या है बोलो भाई? स्वान विष्टम, कुत्ता का बिष्टा। अच्छा नहीं लगेगा कुत्ता बिष्टा बोलना, अच्छा नहीं लगेगा, कीचड़ बोलो। जो अर्ण खा रहे हो वो कीचड़ सदृश है। और जलम च मदिरा समम, और जल क्या है? जो जल पी रहे हो वो क्या है? मदिरा। मदिरा का साथ तुलना किया गया, आप देखिए। और यहां पे भगवद गीता में यही वर्णन दे रहे, भागवत श्लोक का ऊपर श्रील प्रभुपाद कोट कर रहा है, अब जानते मां मूढ़ा मानुष मितन मारस, और भगवान जो मनुष्य का लीला करते हैं नहीं समझ पाते हैं वो व्यक्ति मूर्ख है। परम भाव जानो तो मम भूत महेश्वरम, और वो ये जगत से उधार नहीं हो सकता है। मम भूत महेश्वरम उधार नहीं हो सकता है, मेरा भाव कुछ नहीं समझ पाता है। भगवान किसके लिए धरती पे आते हैं? भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए, ये नरलीला करने के लिए आए थे। इसलिए कहते हैं भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम और कृष्ण लीला पुरुषोत्तम और चैतन्य महाप्रभु प्रेम पुरुषोत्तम और जगन्नाथ पुरुषोत्तमा, पूर्ण पुरुष श्री जगन्नाथ। ये रह जाएगा, फिर टाइम हो रहा है यहाँ पे और पेज रह गया पढ़ने में, सारा कुछ अलग अलग बीच बीच में चर्चा करेंगे तो फिर सब रह जाएगा। जब मैं मनुष्य रूप में अवतार लेता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मेरी दिव्य प्रकृति का सर्वत्र मेरे परम साम्राज्य को नहीं जानते हैं। जब मूढ़ यह देखते हैं कि कृष्ण मनुष्य की ही तरह आचरण करते हैं तो वे भगवान के दिव्य रूप का उपहास करते हैं, क्योंकि ये परम भावम अर्थात उनके दिव्य रूप तथा कार्यों से परिचित नहीं होते हैं। भगवद्गीता में 9:12 में ऐसे व्यक्तियों का वर्णन इस प्रकार किया गया है, मोघसा मोघ कर्माण मोघ ज्ञाना विचितसह राक्षसी में आश्रम चैव प्रकृति में मोहिनी श्रिता। जो इस प्रकार समहित है वे आसुरी तथा अनिश्वरवादी विचार में आकर्षित होते हैं, वो मोहमय अवस्था में उनकी मुक्ति की आशा, उनके सकाम कर्म तथा उनके ज्ञान का अनुशीलन ये सभी निष्फल हो जाता है। ऐसे मनुष्य यह नहीं जान पाते हैं कि कृष्ण का शरीर भौतिक नहीं है, कृष्ण के शरीर उनके आत्मा में कोई अंतर नहीं, किंतु अल्पज्ञ कृष्ण को मनुष्य मानकर उनका उपहास करते हैं। वे यह सोच नहीं पाते हैं कि कृष्ण जैसा व्यक्ति समस्त वस्तुओं का उद्गम कैसे हो सकता है। गोविंदम आदि पुरुष तमहम बजामी, ऐसे व्यक्तियों को मोघसा अर्थात निष्फल मनोरथ वाले कहा जाता है। वे भविष्य में जो भी चाहते हैं वो सब निष्फल हो जाता है, यहां तक कि यदि वे ऊपर ऊपर भक्ति में प्रवृत्त होते हैं तो भी उन्हें मोघसा कहा जाता है, क्योंकि अंततगत्वा ब्रह्म तेज में मिल जाना चाहते हैं। जो लोग अपनी भक्ति से स्वर्गलोक पहुंचना चाहते हैं वे भी निराश हो जाएंगे, क्योंकि यह भक्ति का परिणाम नहीं है। फिर भी उन्हें भक्ति में प्रवृत्त होकर शुद्ध बनने का अवसर दिया जाता है, भगवान चांस देते हैं, बारंबार चांस देते हैं। भगवद्गीता में नहीं, श्रीमद् भागवत में 1:2:17 में कहा गया है, सुनताम सो कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतस्तो अभद्राणी विधुनाते श्रुत सताम। भगवान कृष्ण जो प्रत्येक प्राणी के हृदय में परम आत्मा है और उस सच्चे भक्तों के कल्याण करता है, उस भक्त के हृदय को भौतिक सुख की कामना से रहित कर देते हैं, जो उनके संदेश का रसा स्वाद करता है, जो ठीक से सुने तथा जपे जाने पर स्वयं में सद्गुण युक्त है। जब तक हृदय के भीतर छोर से मल नहीं निकल जाता है मनुष्य शुद्ध भक्त नहीं बन सकता है। इसीलिए इस श्लोक में शुद्ध लाभ शब्द का प्रयोग किया गया है। सैकड़ों तथा हजार नहीं बल्कि लाखों पूर्णतया मुक्त आत्माओं में से विरल कोई शुद्ध भक्त होता है। इसलिए यहां पर कोटिशु अपि शब्द व्यवहार किया गया है। श्रील माधवाचार्य ने तंत्र भागवत से निम्नलिखित उदाहरण दिए हैं, नव कोटिशु देवानाम उश्रय सप्तकुटय नारायणायन सर्प ये केचिति तत्परायण, 9 करोड़ देवता और 7 करोड़ ऋषि भगवान नारायण के भक्त नारायण कहलाते हैं, इनमें से कुछ ही नारायण परायण कहलाते हैं। नारायण देवा रुषाद्य तत्परायण ब्रह्माद्य के चनैव स्यु सिद्ध्यो जुग्य सुखम लभन। सिद्धों तथा नारायण परायण में यही अंतर है कि प्रत्येक भक्त को नारायण परायण है, किंतु जो विभिन्न प्रकार का योग साध्य है वो सिद्ध कहलाते हैं। इसमें प्रमाण है, कहते हैं बहु शास्त्रे बहु वाक्ये चित्त भ्रम हय साध्ये साधन श्रेष्ठ न हय निश्चय। हजार हजार शास्त्र पढ़ने से बहु शास्त्रे बहु वाक्ये चित्त भ्रम हो जाए और साध्य साधन श्रेष्ठ ना है निश्चय, साधना करके साध्य वस्तु को प्राप्त करना वो निश्चय नहीं कर पाता है किसका शरण पे जाना है। यहां पे प्रमाण दे रहे हैं भगवान का शरण पे जाने मात्र से वो व्यक्ति का उद्धार होता है, लेकिन हम क्यों नहीं जा पाते, भगवान यहां पे क्लियर बता रहा है। भगवान के पास जाने के लिए स्टाम्प लगाएंगे भगवान, इसलिए कहते हैं शुद्ध भक्त गिने चुने। जिस प्रकार आप देखेंगे दो पेपर है, ये देखिए ये एक ही पेपर है, ये भी एक ही पेपर है, दोनों पेपर है ना, बोलिए प्रभु जी तो बोलो कम से कम, दोनों पेपर है ना, लेकिन कौन सा पेपर का ज्यादा वैल्यू है? हाँ, सीधा हाथ वाला, क्यों? इसका मान्यता है, मतलब इसमें स्टाम्प लगा हुआ और इसमें स्टाम्प नहीं। उसी प्रकार भगवान का पास जाने के लिए आपको स्टाम्प लगाएंगे, भगवान स्टाम्प लगाएंगे तब जाके आपका वैल्यू बढ़ेगा, फिर भगवान भगत धाम से पहुंचोगे। भगवान स्टाम्प लगा के लेते हैं, जैसे इसी प्रकार पेपर में दोनों में अंतर है, उसी प्रकार संसार में जगत में कितने लोग है, हजार हजार लोग का अंदर कुछ सिद्ध और हजार हजार सिद्ध का अंदर क्या है, विरल है, गिने चुने होते हैं भगवत धाम जाने के लिए और भगवान का भक्ति करने के लिए और शुद्ध भक्त बनते हैं। और क्यों हमारा ये नहीं लगता है, मैं फिर लास्ट में दो मिनट समय ले रहा हूं आपसे। कहते हैं भक्ति हृदय को अति कोमल करती है, भक्ति करने वाले जो भक्ति करते हैं उनका हृदय कोमल होता है, ज्ञान हृदय को विवेक से कठिन करा देता है ज्ञान, और योग हृदय का तप तपा के लोहा बना देता है, और रोना तो रोना रोने से क्या होता है, श्री भगवान भी क्या होते हैं, फुसला देते हैं, पिघल जाते हैं, भगवान भी पिघल जाते हैं रोने मात्र से। क्या रोना चाहिए? अभी रोना तो आता नहीं, इतने माला जप रहा है, इतना सेवा कर रहा है, आ रहा है क्या रोना? आता नहीं, नहीं आता तो कम से कम आंख में मिर्ची लगा देने से अच्छा आएगा, ऑटोमेटिक रोना आ जाएगा। फिर क्या कहते हैं, फिर क्या कहते हैं, हम लोग को भगवान से दूर कैसा जाता है, दो चीज हमको भगवान से बाधक बनता है, दो चीज भगवान से हमको दूर कराता है, क्या क्या है? एक ही है संतति, एक ही है संपत्ति, दोनों याद रखिए, एक ही है संपत्ति और एक ही संतति, संतति मतलब संतान, और इसका पूरा एक्सप्लेन ज्यादा करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये दो चीज हमको भगवान से क्या करते हैं, वो दो चीज जीव के लिए माया का बंधन के कारण है, इनमें वासनाओं की तीव्रता के कारण जीव को बारंबार आवागमन बारंबार में फंसाना पड़ता है और भागवत सेवा से वंचित होना पड़ता है, तो और वो व्यक्ति क्या करता है, और भागवत सेवा से दूर हो जाता है, ना भागवत पढ़ पाता है, ना भागवत श्रवण कर पाता है, ना भगवान का सेवा कर पाता है, ना भगवान का नाम जप कर पाता है। इसलिए धीरे धीरे प्रैक्टिस, क्या करना है, प्रैक्टिस, ट्राइंग एंड क्राइंग, क्या करना है, प्रयास करना है, ट्राई ट्राई करना है और क्राइंग क्रंदन के लिए, किसके लिए करना, किसके लिए रोना है, हाँ जी भगवान के लिए, लेकिन हमें भगवान के लिए रोते हैं, कभी आता है भाई मृदंग पीट पीट के मृदंग फाट जाता है लेकिन हमारा हृदय नहीं फट रहा है, इतने जोर से हाँ लेकिन हृदय नहीं फट रहा है, हृदय नहीं पिघल रहा है, सुबह से शाम तक करता बजा बज के पास लेकिन हृदय नहीं पिघल रहा है, हमें कितने आसक्ति में पड़े हैं। मैंने काल गया था एक ही स्कूल में 1200 बच्चे पढ़ते हैं, काल गया था गीता देने के लिए, कोई दान दिया था उसको लेकर बांटने के लिए, बच्चे इतने फर्स्ट क्लास बैठ गए और सुनने के लिए, उनको चार क्वेश्चन पूछा और चार क्वेश्चन का आंसर ऑटोमेटिक दे दिया गीता नहीं पढ़ के। मैं बोला ये आप लोग को गीता पढ़ेंगे तो इसी क्वेश्चन का आंसर ही गीता में मिलेगा, और मेरा को बताया, बोले नहीं प्रभु जी हमें गीता पढ़ने का पहले आंसर देते हैं। बोला अच्छा है, ये तो स्कूल अच्छा है, चमत्कारी हो गया भाई ये स्कूल, तो आंसर दिए, मेरा को अच्छा लगा। और वो लोग प्रत्येक महीना में मेरा को इन्वाइट कर रहा है, यही पास में है, कभी ना कभी मेरा साथ आप जाइए, यही मथुरा में बहुत सारे स्कूल का बच्चे है जो जोड़ना भी चाहते हैं, भगवान का नाम जपना चाहते हैं, गीता पढ़ना चाहते हैं, हमारा कर्तव्य है उनको पास हमारा संदेश चला प्रभुपाद का संदेश को बताना है। सभी लोग मौजूद है, हरे कृष्ण बोल के बोलिए, कभी भी कुछ बोला जाता था कम से कम तो हरे कृष्ण बोलो। मेरा वाणी को यहीं पे विराम देता हूं, कोई भी त्रुटि रहा आप लोगों को क्षमा कर दीजिएगा। वंशा कल्पद्रुभ्य कृपा सिंधुभ्य वच पतितान पावन भ्यो वैष्णव नमः नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृद्ध की, श्रीमद भागवत महापुराण की, शील प्रभुपाद की, संवेद गौर भक्त वृंद की, निदाई गौर प्रेमानंदे, जय जय श्री राधे। हाँ।